मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 8 फरवरी 2017 है और आज के इस afis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वह सच पूछे तो पिछले कुछ दिनों से जो विषय चलता आ रहा है, जिसे हम बैलेंस इन लाइफ कह रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में है। और आज हम कल की ही बात से सूत्र पकड़ते हुए उस बात को और आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस बात के लिए धन्यवाद कि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं इस विषय पर आ रही हैं, काफी संख्या में आ रही हैं और खूब मजेदार और विचारोत्तेजक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इससे जरा मुझे भी भरोसा होता है कि हाँ, कम से कम आप सब सुन रहे हैं और केवल सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि उस पर सोच भी रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं। और जब आप सोच रहे हैं और समझ रहे हैं तो फिर मुझे भरोसा हो जाता है कि इसका असर भी होगा, क्योंकि जहां सोचना और समझना बंद हो जाता है तो कम से कम मेरी तो यह मान्यता है ही कि उसका असर होना भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों, कल मैं आप से बातें कर रहा था, खासकर हम दैनिक जीवन में किस तरह से बैलेंस को देखते हैं। और मैंने भिंडी और गोल्ड का उदाहरण दिया था, सोना का उदाहरण दिया था। आप में से कुछ ने इस उदाहरण को बड़ा अप्रिसिएट भी किया है। तो देखिए, उस उदाहरण से बैलेंस के बारे में एक क्या सिद्धांत निकलता है ना। अब हम इसी तरह से कुछ सिद्धांत निकालेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत निकलता है। पहला जो सिद्धांत है, जो अब हम करने जा रहे हैं, स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, वो सिद्धांत यह है कि बैलेंस के लिए जरूरी है कि आप डालें और निकालें। ये बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। यानी कि जब भिंडी ज्यादा हो जाती है तो आप निकालते हैं और जब कम हो जाती है तो उसमें डालते हैं, राइट। और यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। आप देखिए कि जो बच्चा 10 साल से मान लीजिए कि दुकान पर बैठ रहा है, छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंटल वर्क काम में गांव में आप जाएंगे या शहरों में तो बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं दुकान में, जिनमें मैं खुद भी था। और इसके बाद अगर वो 60 साल की उम्र में भी वही काम कर रहे हैं, तौलने का काम कर रहे हैं, वजन करने का काम कर रहे हैं, तो उस एक काम को वो रोजाना पता नहीं कितनी बार कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं समझ लीजिए। इसके बावजूद 60 साल की उम्र में भी उन्हें तराजू की जरूरत पड़ती है। हालांकि उनका अनुमान अब पहले से थोड़ा सा बेहतर हो गया है। मैं आज अगर किसी चीज को तौलना चाहूंगा तो जो डिफरेंस होगा बैलेंस के बीच का, वो हो सकता है कि मेरा 15-20% हो, लेकिन वह बच्चा जो बचपन से इसी काम को कर रहा है उसका डिफरेंस 2-5% हो सकता है, लेकिन डिफरेंस होगा। और वह जब भी आपको सामान देगा तराजू में तोल कर ही देगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल परफेक्ट निकले उसका अनुमान अंदाजा, लेकिन ज्यादातर यही होगा कि या तो वह डालेगा या निकालेगा। हां, यह जरूर है कि उसके डालने और निकालने की मात्रा मेरे डालने और निकालने की मात्रा से काफी कम होगी, काफी कम होगी। उसका कारण है उसका अनुभव, उसका अनुमान। इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि ये जो तौलने की बात है, जो डालने और निकालने की जो बात है, ये ताउम्र जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि अब हम बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, अब तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, जो बहुत सस्ती चीजें हैं उनके लिए आप अपनी इस एक्सपर्टी का इस्तेमाल भी कर लेंगे। चलिए, भिंडी आप वैसे ही देने लगेंगे, आलू वैसे ही देने लगेंगे, प्याज वैसे ही देने लगेंगे, लेकिन जिस दिन भिंडी 100 रुपए किलो हो जाएगी आप तराजू हाथ में पकड़ लेंगे, जिस दिन प्याज 80 रुपए किलो हो जाएगा आप तराजू हाथ में पकड़ लेंगे, अभी 10 रुपए किलो है तो आप उसको वैसे ही देते रहेंगे। यानी कि अभी भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा अनुमान 100% परफेक्ट होगा। वर्ड इज परफेक्ट, राइट। काम चलाऊ के लेवल पर चलता रहता है। तो दोस्तों, जो मैंने पहले कहा था कि यह एक सतत प्रक्रिया है, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिंदगी में कभी आप ये मत समझ लीजिएगा कि अब तो मैं परफेक्ट हो गया हूं, अब तो मुझे तराजू की जरूरत नहीं है, यानी कि न डालने की जरूरत है न निकालने की जरूरत है। ऐसा कभी भी मत समझिएगा दोस्तों। इसे ही हमारे यहां कहा गया है आत्मावलोकन, आत्म साक्षात्कार, कि आप हमेशा आत्मा का मतलब है अपने अंदर का अवलोकन करते रहिए, अपने अंदर को देखते रहिए कि मुझसे कहां कमी हो रही है, कहां अधिकता हो रही है, मुझ में कहां कमी है, कहां मैं ज्यादती कर रहा हूं, और लगातार उसमें फिर डालते और निकालते रहिए। हमारी प्रॉब्लम यह है, या तो हम डालते ही चले जाते हैं, या हम निकालते ही चले जाते हैं, या डालना और निकालना भूल ही जाते हैं, और लगता है कि हम तो जैसे हैं, जो भी हैं वो बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं, हमें न डालने की जरूरत है न हमें निकालने की जरूरत है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, या कह लीजिए कि सबसे बड़ी गलती है जो हमारी जिंदगी में भयानक किस्म का संतुलन पैदा कर देती है। आप देखिए कि इस पृथ्वी पर या जहां भी आप देखेंगे, आपको हर जगह संतुलन का सिद्धांत मिलेगा। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? कफ पित्त और वात का सिद्धांत। जब इनमें संतुलन खराब होता है, तबीयत खराब हो जाती है। हर जगह आपको संतुलन दिखाई देगा। किसी की किडनी फेल हो गई है तो किडनी फेल होने से क्या हुआ है? मेरी आप उंगली कट जाए तो उंगली कटने से तो मैं नहीं मरूंगा, लेकिन किडनी फेल होने से मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी अगर उंगली फेल हो गई है तो यह मेरे आंतरिक संतुलन को गड़बड़ नहीं कर रही है, बाहरी संतुलन को थोड़ा सा जरूर गड़बड़ कर रही है, और उस उंगली के कट जाने से मैं अब उतनी मजबूत मुट्ठी बंद नहीं कर सकूंगा, बस इतना ही तो। लेकिन किडनी फेल हो जाने से क्या होगा दोस्तों? किडनी फेल हो जाने से केवल यही मतलब जो होगा वो ये होगा कि किडनी जो काम करके मेरे अंदर के संतुलन को बनाए रख रही थी, अब उसने उस संतुलन को बनाना बंद कर दिया, यानी उसका उत्पादन बंद कर दिया है, उसने अपना फंक्शन बंद कर दिया है, और नतीजा ये हो रहा है कि मेरे अंदर का जो संतुलन है वो गड़बड़ होने लगा है, बस और कुछ नहीं है। और अगर किडनी अपेंडिक्स की तरह, जो पेट में एक हमारा तत्व अपेंडिक्स, आपको डॉक्टर्स बताएंगे मेडिकल टर्म में, उसका कोई रोल नहीं होता लेकिन वो मौजूद रहता है, उसके रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑपरेट करके निकाल भी दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे संतुलन, जीवन के संतुलन पर उसका कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं है। दोस्तों, पूरी दुनिया में, जीवन के एक एक क्षेत्र में, कण कण में आपको यह संतुलन का सिद्धांत ही दिखाई देगा, राइट? अब आप देखिए कि मैंने अभी आयुर्वेद के सिद्धांत की बात की, या थोड़े से हमारे शरीर के शास्त्र की बात की, आइए हम एक सामान्य तौर पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, आपको समझना खुद ही, क्योंकि आप जानते हैं, उनको बस समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप खुद संतुलन साधे हुए हैं। बिना संतुलन के आप रह ही नहीं सकते। अगर आप मेरे इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो आपके चेतना में जितना परफेक्ट संतुलन होगा, मेरे ऑडियो को आप उतने अच्छे से सुन पाएंगे, और मेरी चेतना में जितना परफेक्ट संतुलन होगा, मैं अपनी बात को आप तक उतने अच्छे से पहुंचा पाऊंगा। सीधी सी बात है। दोस्तों, आपको प्यास लगती है, गर्मी की शुरुआत होने वाली है, आपको प्यास लगती है। हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं कि प्यास लग रही है, लेकिन ये प्यास लगना क्या है? प्यास लगना का मतलब है कि शरीर के अंदर का संतुलन कुछ गड़बड़ होने लगा है, और एक तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम में आपको पता लग गया है कि प्यास लगी है। जैसे कि कंप्यूटर बता देगा कि हाँ यहां, या थर्मामीटर बता देता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इतना कम है, ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी में भी एक ऑटोमेटिक थर्मामीटर है, हमें पता लग जाता है कि क्या स्थिति है। तो यानी कि पानी की कमी हो गई है, उसका संतुलन गड़बड़ हो गया है। यू नीड वाटर। और प्यास जब लगती है तो हम बिना सोचे समझे, विचार नहीं करते, पानी पी लेते हैं। हमारी प्यास बुझ जाती है, यानी कि संतुलन पुनर्स्थापित हो जाता है। वो यही है। आप देखिए कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है धूप में, वो क्या है? वो केवल यह है कि बाहर के धूप से जो शरीर तप रहा है, और अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में जो बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। अंदर का टेम्परेचर तो हमारा 98.4 ही रहता है, वही रहना चाहिए, नहीं तो हम बुखार हो जाएगा। लेकिन बाहर का टेम्परेचर सूरज की गर्मी के कारण, जो 44-45 सेंटीग्रेड जो हम टेम्परेचर झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि हमारे अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत बड़ा फर्क आ गया है, और ये हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। तो नेचर ने क्या बनाया है? एक ऑटोमेटिक पसीने की बूंदे, पानी के कण, ताकि जो बाहरी टेम्परेचर है, जो हमारी स्किन का जो टेम्परेचर है, वो ठीक ठाक रहे, और अंदर के टेम्परेचर के साथ वो संतुलन बना सके। तो पसीना उसने ला दिया है, हमें लगता है कि ये पसीना है, ये संतुलन के लिए है। मित्रों, ये मैं छोटे छोटे उदाहरण अलग अलग क्षेत्र के इसलिए दे रहा हूं ताकि आप हर चीज में उस संतुलन को देख सके, और जब आप हर चीज में संतुलन को देखने लगेंगे तो आप वहां से सिद्धांत निकालने लगेंगे। हाँ, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी परिस्थिति तो एक ही नहीं होगी, हजारों तरह की परिस्थितियां आएंगी, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक ही परिस्थिति दोबारा कभी रिपीट ही नहीं होगी। तो ये तो कला आपको सीखनी होगी ना, कि जो सामने बॉल आ रही है आप उसको कैसे हिट करें। हिट करना आपको सिखाया जा सकता है, लेकिन बॉल के जजमेंट के हिसाब से हिट करना, ये तो आपकी अपनी ही क्षमता है, अपनी ही कला है। इसलिए मैं थोड़ा सा अलग अलग क्षेत्रों के आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो इसके लिए मुझे आप लोग माफ कीजिएगा। दोस्तों, जब थकान हो जाती है आपको, तो थकान होती है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इसका मतलब है कि थकान से जो शरीर की ऊर्जा कम हो गई थी, असंतुलन पैदा हो गया था, अब उसे आराम देकर के, आराम देने का मतलब है कि कंजर्विंग द एनर्जी, यानी कि आप अपने शरीर की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हैं, या कह लीजिए नष्ट होने से बचा रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे आंखों से निकलती है, इसीलिए आपने देखा होगा ध्यान करते समय या पूजा करते समय कहा जाता है कि आंखें बंद कर लीजिए, ताकि एनर्जी को आप कंजर्व कर सकें, रोक सके। आपने ये भी देखा होगा कि जब बहुत थकान हो जाती है, जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आपको लगता है कि नहीं, बाहर कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, बहुत मैं परेशान हूं, महसूस किया होगा, आंखें क्यों बंद करते हैं, इसलिए कि आंखों से जो ऊर्जा निकल रही है आप उसको रोक लेते हैं, तो थोड़ी सी आपको उससे मदद मिल जाती है, बैलेंस को बनाने में मदद मिल जाती है। मित्रों, आप ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन क्या गिरे ही रहते हैं? कितनी बार तो ऐसा हुआ कि ठोकर खाए हैं लेकिन गिरे नहीं हैं, गिरते गिरते बच गए हैं। मतलब जैसे ही ठोकर लगी, आपने, आपका संतुलन गड़बड़ हुआ, और जैसे ही संतुलन गड़बड़ हुआ आपने संभालने की कोशिश की, और उस प्रोसेस में आपने अपने आप को संभाल भी लिया। ये एक अलग तरीके का संतुलन है। आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? सोचिए, साइकिल चलाना है क्या? साइकिल चलाना संतुलन है, संतुलन स्थापित करना है। बाइक चलाना भी संतुलन स्थापित करना है, लेकिन दोनों के संतुलन में बहुत बड़ा फर्क है। यहां मैं फर्क भी आपको बता रहा हूं। साइकिल का संतुलन बाइक चलाने के संतुलन से कई गुना ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि जब आप साइकिल में संतुलन साधते हैं साइकिल पर, तो याद रखिए आप श्रम भी करते हैं। आपको अपने शरीर को हरकत में रखना पड़ता है, आपको पैडल मारना पड़ता है। जैसे ही आपका पैडल रुकेगा साइकिल खड़ी हो जाएगी और आप गिर जाएंगे, क्योंकि खड़े पर संतुलन सध ही नहीं सकता। खड़ी साइकिल पर आप संतुलन नहीं साध सकते, फिर आपको अपने दोनों पैर जमीन से टिकाने पड़ेंगे। ये संतुलन सधेगा तब जब साइकिल चलती रहेगी। याद रखिए कि संतुलन सधता तब है जब आप कर्मरत रहेंगे। कभी भी काम को संतुलन असंतुलन का कारण मत समझिएगा, कभी मत समझिएगा। तो वहां आप अपने शरीर को भी हरकत में रखते हैं और संतुलन साधते हो, ज्यादा कठिन काम है। बाइक में आपको शरीर को हरकत में नहीं रखना है, बटन है, क्लच है, उससे आप संतुलन साधते हो, केवल आपको पूरा का पूरा ध्यान बाइक के वजन पर रखना है। ये एक अलग किस्म का संतुलन है। तो मित्रों, मैंने कुछ संतुलन के आपको अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण दिए हैं, इन पर आप लोग विचार करें। वक्त हो चुका है, आगे की बात हम लोग कल करेंगे। अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।